स्थित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पत्रस की दूसरी पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है पवित्रता, सत्य ज्ञान और पुनरागमन। हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हुए, किन्तु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मसीह ने मुझको बचाया, उसका धन्यवाद। मेरे मसीह ने मुझको बचाया, उसका धन्यवाद।
मनी
میرے مسیح نے مجھ کو بچایا, اس کا دھنیواد. سب جن مل کر گائیں پربھو کی مہیما گائیں, اس کی سوتی گائیں, وہ سب جن دل سے گائیں.
प्रिय मित्र, प्रभुष्य के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार. मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं. मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं. मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से दूसरा पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं. पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि जहां पर पत्रस हमें कहता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और वचन का ठट्ठा करने वाले यह जानते हुए भी भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन ही के द्वारा आकाश आरंभ में विद्यमान है और पृथ्वी जल ही से उभारी गई तथा जल में स्थिर है, और ठट्ठा करने वाले के ही कारण प्राचीन युग में संसार जल से नष्ट किया गया था. वर्तमान जगत आग के विनाश के लिए रखा गया है और यह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसा ही रखा रहेगा. मेरे प्रियो, हमने इन्हीं बातों को पिछले अध्ययन में देखा था, परंतु आज जब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं तो आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें. हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो इस समय आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं. आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, अपने वचन के द्वारा आप उनसे बोले और बातचीत करें, और विशेष करके जो इस समय निराश हैं, परेशान हैं, बीमार अवस्था में हैं, अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, नौकरी की तलाश में हैं, और अपने जीवन में संतान की इच्छा रखते हैं, प्रभु जी आप उनकी इच्छाओं को पूरा करें, उनकी सहायता करें ताकि प्रत्येक जीवन आप में धन्य होने पाए. अपने वचन के द्वारा हम सबसे आप बोले और बातचीत करें. धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ते हैं. दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है. मेरे प्रियो, यह तो स्पष्ट ही है कि आकाश और पृथ्वी का विनाश प्रभु के दिन होगा, जो एक लंबा समय है. 7 वर्ष महाक्लेश के और प्रभु राज के 1000 वर्ष. महाक्लेश के बाद जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने को आएगा, तब वह इस पृथ्वी को पुनरुद्वार करेगा, परंतु यह परिपूर्ण पुनरुद्वार नहीं होगा. पत्रस जिस विलय की चर्चा कर रहा है वह महाक्लेश के बाद प्रभु राज्य के भी बाद की घटना है. अतः मेरे मित्रों, यदि कलीसिया कल उठा ली जाए तो भी पत्रस द्वारा व्यक्त यह विनाश 1007 वर्ष बाद ही होगा. मेरे प्रियो, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर धीरजवंत है, वह सहनशील है, वह किसी जल्दबाजी में काम नहीं करता है। आदिकाल से अनंत काल तक का सब काम उसी का है। उसे समय की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो हजार वर्ष एक दिन और एक दिन हजार वर्ष के तुल्य है। परंतु मुख्य बात यह है कि आकाश और पृथ्वी का विनाश तो होना ही है। इस बीच वह मनुष्य को अवसर दे रहा है, जी हाँ, कि वह मन फिराए और उसके पास लौट आए। यही कारण है कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनाना है, क्योंकि मन और जीवन को बदलने का सामर्थ इसी में है। वचन ही से मनुष्य नया जीवन पाता है। अपनी पहली पत्री में पत्रस कहता है, पहला पत्रस एक अध्याय उसके दो और तीन पद में, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप नष्ट हो जाएं। इस पुस्तक को पढ़ने का एकमात्र कारण यही है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप दंड के भागी हों। वह तो यह चाहता है कि आप मृत्यु से बचकर जीवन में प्रवेश करें। आप ऐसा कर सकते हैं। आप उसके निकट आकर आपके लिए उसके पास आरक्षित उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर को आपसे प्रेम करने से रोक नहीं सकते? आप उसके प्रेम से इनकार कर सकते हैं, परंतु उसे प्रेम करने से रोक नहीं सकते जो आपसे वह करता है। आप उसके प्रेम की वर्षा को नहीं रोक सकते, परंतु छतरी खोलकर उसके प्रेम से आप बच सकते हैं। आप उदासीनता, विद्रोह और पाप की छतरी के नीचे आकर उसके प्रेम से वंचित हो सकते हैं, परंतु आप उसे रोक नहीं सकते। वह तो आपसे प्रेम करता है और करता ही रहेगा। एक युवक की माता बहुत ही अच्छी थी, परंतु वह एक अभक्त युवती से प्रेम करने लगा था। यह युवती उस युवक की माता से घृणा करती थी और उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। उस युवक की माता उसे कुछ नहीं कहती थी, परंतु उसका स्वभाव और उसकी उपस्थिति ही उस युवती के लिए झिड़की स्वरूप था। वह युवक उस युवती की सुंदरता का दास हो गया था। उसने उसे विवाह करने की याचना की तो युवती ने कहा, तुम्हें अपनी माँ का दिल निकाल कर लाना होगा। वह युवक उससे प्रेम का ऐसा दीवाना था कि उसने इस शैतानी काम को भी पूरा किया। उसने अपनी माँ की हत्या की और उसके दिल को लेकर अपनी प्रेमिका के पास जा पहुंचा कि मार्ग में ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसकी माँ का दिल कहने लगा, पुत्र तुझे चोट तो नहीं लगी? मेरे मित्रों, आप परमेश्वर के मुंह पर थप्पड़ मार सकते हैं, आप उससे मुंह मोड़ सकते हैं, आप उसकी निंदा कर सकते हैं, परंतु आपसे प्रेम करने से उसे आप रोक नहीं सकते। उसने आपसे ऐसा प्रेम किया है कि आपके उद्धार के लिए अपना एकलौता पुत्र यीशु दे दिया है, आपके स्थान पर वह मर जाए। यदि आप प्रभु यीशु द्वारा उपलब्ध कराए गए उद्धार को ग्रहण करें तो वह आपको पापों से मुक्ति दिलाएगा। जी हाँ, सदा ऐसा ही वातावरण नहीं रहेगा। मैं आज के जीवन की निरस्ता को जानता हूँ, उकताहट को जानता हूँ। यह सब समाप्त हो जाएगा। हमारा संसार दंड की ओर भागा जा रहा है। दंड तो हमें अवश्य ही मिलेगा। दूसरा पत्रस तीन अध्याय के दस पद में हम पढ़ते हैं, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। ध्यान दीजिए, लिखा है प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। अब इस बात पर विवाद है कि यह प्रभु यीशु के आगमन पर होगा या 1000 वर्ष के प्रभु राज के बाद होगा। मैं यह तो मानता हूं कि प्रभु का दिन एक लंबा समय है जो महाक्लेश से आरंभ होकर 1000 वर्ष प्रभु राज्य और शैतान के विद्रोह और श्वेत सिंहासन के न्याय के समय तक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में नया आकाश और नई पृथ्वी का उल्लेख है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 2 पद में भी पौलुस कहता है कि वह दिन चोर के समान आएगा, अर्थात अकस्मात ही आ जाएगा। यहां पर हम पढ़ते हैं, उस दिन आकाश बड़ी गड़गड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। गड़गड़ाहट का मूल अर्थ है तीर चलने की आवाज, सनसनाहट। तब हम आगे पढ़ते हैं, तब तो बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। पदार्थ अनंत नहीं है जैसा कभी माना जाता था। पदार्थ ऊर्जा में बदल सकते हैं। तत्व वह अंश है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। यहां पर हम देखते हैं पिघलने का मूल अर्थ है खुल जाना। आज मनुष्य तत्व को विभाजित करके उसमें अवस्थित ऊर्जा प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि हमारा संसार ऊर्जा रहित होता जा रहा है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना करते समय इसमें पेट्रोल की ऊर्जा का प्रबंध भी किया था। जी हाँ, यह पृथ्वी एक विशाल बाजार के समान थी। इसमें उपभोग की वस्तुओं की कमी नहीं थी, परंतु मनुष्य ने सब समाप्त कर दिया है। परमाणु में असीमित ऊर्जा है, और जब परमेश्वर पृथ्वी को ध्वंस करेगा तब पृथ्वी का विघटन हो जाएगा, जैसे एक विशाल परमाणु बम से उड़ा दी गई हो। मेरे विचार में परमेश्वर परमाणु के विपरीत रचना काम में लेगा और उसके बाद मनुष्य उसका विभाजन नहीं कर पाएगा। यहां पर हम पढ़ते हैं, पत्रस कहता है पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी का जल भी जल जाएगा। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बना है और दोनों गैस ज्वलनशील हैं। अग्निशमन विशेषज्ञ बताते हैं कि कुछ आग पानी से भड़क उठती हैं, अतः उन्हें पानी के स्थान पर अन्य रसायनों द्वारा ही आग बुझाना पड़ता है। पत्रस कहता है कि वह भविष्य में भी वैसा ही दंड देगा जैसा उसने प्राचीन काल में दिया था। मेरे प्रियो, इस अध्याय के पद 9 में पत्रस कहता है कि ठट्ठा करने वाले कहेंगे सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। ठट्ठा करने वालों का भ्रम यह है कि उन्हें प्राचीन काल का ज्ञान नहीं है, परंतु क्रम विकासवादी बताते हैं कि कभी पृथ्वी पर प्रलय आया था। बड़े बड़े पहाड़ की महान भूकंप के कारण बने चट्टान है, वह भूकंप भी परमेश्वर का दंड था। इसी प्रकार प्रभु का दिन भी दंड लाएगा। प्रभु का दिन धर्मशास्त्र की एक चीर परिचित उक्ति है। भविष्यद्वक्ताओं ने इसका उपयोग किया था, प्रभु यीशु ने इसका उपयोग किया था, और नए नियम के लेखकों ने इसका उपयोग किया है। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने इसका उपयोग किया है और कहा है कि यह अंधकार से आरंभ होगा, महाक्लेश के समय से। उस दिन का अंत परमाणु विस्फोट के साथ होगा, जिसके कारण पृथ्वी आग से जल जाएगी। इन दोनों के मध्य महाक्लेश होगा, प्रभु राज होगा, शैतान को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाएगा, अर्थात मुक्त किया जाएगा, और उसका साथ देने वाले कुछ लोग होंगे। तब शैतान का अंत होगा, वह बंदी बनाया जाएगा और श्वेत सिंहासन का न्याय होगा। पत्रस की भविष्यवाणी को इस घटना के बाद नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न होने के बारे में कहा गया है। मेरे प्रियो, अब हम देखेंगे दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 11 पद। यहाँ पर लिखा है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। पत्रस कहता है कि पूर्व काल में परमेश्वर के दंड और भविष्य में परमेश्वर के दंड के प्रकाश में हमें एक ओर खड़े होकर अंगूठा हिलाना और आलोचना करना उचित नहीं। किसी पर उंगली उठाना विश्वासियों के लिए कितना आसान है, परंतु आप परमेश्वर के वचन के फैलाने में क्या प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आज यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर प्रत्येक विश्वासी, प्रत्येक कलीसिया और प्रत्येक पास्टर को ध्यान देना है। प्रत्येक विश्वासी को स्वयं से कहना है, मैं पास्टर की आलोचना या अन्यों पर उंगली उठाने के लिए नहीं, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने और रचनात्मक कार्य करने के लिए हूं। जी हां, प्रश्न यह है कि मैं इस विषय में क्या कर रहा हूं। अपने आप से आप पूछें। दूसरा पत्रस 3:12 में लिखा है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। पत्रस तितर वितर यहूदियों में से आए विश्वासियों को यह पत्र लिख रहा है कि प्रभु का दिन निकट है, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। मेरे प्रियो, आज के आकाश के समाप्त हो जाने पर परमेश्वर का दिन जो अनंत काल है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 उसका 1 में हम पढ़ते हैं, वह आएगा। यह गलील के एक मछियारे के मुंह से निकला एक अत्यधिक अद्भुत वक्तव्य है। मेरे विचार में पतरस ने सोचा भी नहीं होगा कि गलील सागर जहां वह मछली पकड़ता था वह पानी कैसे जल जाएगा, परंतु यह तो निश्चित है कि पृथ्वी एवं आकाश की रचना की इकाइयां पिघल जाएंगी। यहां पिघलना शब्द वह नहीं है जो पद 10 में आया है। इस शब्द का मूल अर्थ है समाप्त होना, जो केवल परमाणु विकिरण से ही हो सकता है। मेरे प्रियो, अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे भावी संसार। अब पत्रस भविष्य की चर्चा करेगा। भविष्य में भी संसार रहेगा। परमेश्वर पृथ्वी को विघटित कर देगा तो इसका अर्थ यह नहीं कि पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। पूर्व काल में परमेश्वर ने पृथ्वी को दंड देने के बाद भी संजोए रखा था और भविष्य में भी परमेश्वर दंड तो देगा परंतु पृथ्वी को बचाकर रखेगा। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, परंतु हम अगले अध्ययन में इसके बारे में अवश्य देखेंगे जो भावी संसार है। हम आज के इस वचन पर, वचन के प्रकाशन पर विचार करें, अपने जीवन को जांचें और देखें कि आज हम कहां हैं, क्योंकि हम संसार में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सब बच जाएं और उस भयानक नरक की आग से बचाए जाएं। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने जीवन के लिए यही विचार रखें और परमेश्वर की ओर निहारें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9821001 8। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।